एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार और स्वागत है एक और ज्ञान गोष्ठी में। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, लगभग 2500 साल पीछे, एक ऐसे विचारक के पास जिनके विचार आज भी मतलब हैरान कर देने वाले तरीके से प्रासंगिक हैं। हम बात कर रहे हैं चीन के महान गुरु कन्फ्यूशियस की और उनके विचारों के संग्रह एनालेक्स की।
नमस्कार। और ये प्रासंगिकता ही तो कमाल की बात है ना?
हाँ बिल्कुल।
कि समाज में तालमेल कैसे हो, एक नैतिक, एक अच्छा जीवन वो कैसे जिया जाए, अच्छे लीडर कैसे बने, ये सारे सवाल तो आज भी हमारे सामने हैं वैसे के वैसे।
सही कहा।
और एनालेक्स इन्हीं सवालों से जूझता है, पर किसी भारी भरकम फिलोसफी ग्रंथ की तरह नहीं।
अच्छा।
बल्कि छोटी छोटी बातों, किस्सों और संवादों के जरिए। ये असल में एक तरह की बातचीत है जो सदियों से चल रही है।
हाँ ये तो है। ये हमें व्यक्तिगत नैतिकता से शुरू करके फिर एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने तक का रास्ता दिखाता है।
बिल्कुल।
तो चलिए कन्फ्यूशियस के इस बौद्धिक खजाने में थोड़ा गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आज की दुनिया के लिए इसमें क्या मोती छिपे हैं।
तो जब हम एनालेक्स के लेखक की बात करते हैं तो जाहिर है नाम तो कन्फ्यूशियस का ही आता है, जिन्हें चीन में मास्टर कोंग या कोंगफुजी कहते थे। और वो 551 से 479 ईसा पूर्व के बीच रहे। पर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद ये किताब लिखी नहीं थी।
हाँ ये जानना जरूरी है। एनालेक्स, जिसका मतलब ये शायद चुने हुए कथन,
हाँ बिल्कुल,
ये असल में उनके जाने के बाद उनके शिष्यों और फिर उनकी अगली पीढ़ियों ने उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को याद करके संकलित किया।
सही।
इसीलिए शायद इसका अंदाज इतना स्वाभाविक, इतना बातचीत वाला लगता है। पढ़ते हुए लगता है कि हम सीधे उनकी किसी क्लास या चर्चा में पहुंच गए हैं।
हाँ बिल्कुल वैसा ही। और वो दौर भी सोचे, कन्फ्यूशियस चीन के वसंत और शरद काल में जी रहे थे। ये भारी राजनीतिक उथल पुथल का समय था। लगातार युद्ध, सामाजिक मूल्यों का पतन, जो राजवंश की सत्ता कमजोर पड़ रही थी और अलग अलग राज्य आपस में लड़ रहे थे।
मतलब चारों तरफ अनिश्चितता और अराजकता का माहौल रहा होगा।
बिल्कुल। और इसी अराजकता के बीच लू राज्य के एक विद्वान और छोटे अधिकारी कन्फ्यूशियस ने एक रास्ता खोजने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि समाज की जो बाहरी अव्यवस्था है, उसकी जड़ कहीं ना कहीं लोगों के अंदरूनी नैतिक पतन में है।
अच्छा।
पर उन्होंने खुद को कोई नया धर्मगुरु या ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो खुद को प्राचीन ज्ञान का, परंपराओं का एक तरह से संचारक मानते थे।
अच्छा, ट्रांसमीटर।
हाँ, मतलब जो भूली जा रही अच्छी बातों को फिर से जीवित करना चाहता हो। उनका फोकस स्वर्ग, नरक या पारलौकिक बातों पर नहीं था, बल्कि इसी दुनिया में इंसानी रिश्तों पर, सही आचरण पर था। कैसे जिएं, कैसे शासन करें,
व्यावहारिक बातें हैं।
बिल्कुल। और उनकी एक और बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने शिक्षा को जन्म या कुल तक सीमित नहीं रखा। कहते हैं उन्होंने हजारों छात्रों को पढ़ाया सिर्फ उनकी योग्यता देखकर। उनकी बातों का आधार कोई दैवीय शक्ति नहीं थी, बल्कि इंसानी स्वभाव की गहरी समझ, इतिहास का अध्ययन और थोड़ा बहुत उनका अपना राजनीतिक अनुभव। शायद इसीलिए उनकी बातें इतनी जमीनी और प्रैक्टिकल लगती हैं।
तो फिर एनालेक्स है क्या? मतलब सार रूप में एक गाइडबुक।
हाँ, कह सकते हैं एक नैतिक जीवन जीने और एक बेहतर समाज बनाने की गाइडबुक। लेकिन जैसा हमने कहा, ये कोई स्टेप बाय स्टेप फिलॉसफी की किताब नहीं है।
ठीक है।
ये छोटे छोटे विचारों, संवादों और किस्सों का एक संग्रह है, जैसे अलग अलग रंग के धागों से बुना कोई कपड़ा हो।
अच्छा उदाहरण है।
इसमें कन्फ्यूशियस हमें कई रूपों में दिखते हैं। कभी वो गुरु हैं जो शिष्यों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, कभी दार्शनिक हैं जो नैतिकता पर सोच रहे हैं, कभी शासकों को सलाह दे रहे हैं या उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, और कभी बस एक इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपने सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कर रहा है।
और किताब का एक मुख्य लक्ष्य है शायद वो जुन्जी बनने का रास्ता दिखाना।
हाँ बिल्कुल। जुन्जी यानी एक उत्कृष्ट व्यक्ति, सज्जन या श्रेष्ठ चरित्र वाला इंसान। और सबसे जरूरी बात, ये कोई जन्म से मिलने वाली पदवी नहीं है। कन्फ्यूशियस के हिसाब से कोई भी व्यक्ति,
कोई भी,
हाँ कोई भी, लगातार कोशिश करके, सीखते रहकर और अपने आचरण को सुधार कर जुन्जी बन सकता है। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रयास और नैतिक साधना का मार्ग है।
ये तो बहुत आशा जगाने वाली बात है।
बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। कन्फ्यूशियस मानते थे कि समाज की जो सारी समस्याएं हैं वो असल में व्यक्तिगत नैतिक विफलताओं का नतीजा है।
अच्छा, मतलब जड़ व्यक्ति में है।
परिवार में तालमेल आएगा। जब परिवार सामंजस्यपूर्ण होंगे तो समुदाय व्यवस्थित होगा और व्यवस्थित समुदायों से ही एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बनेगा। ये एक तरह का रिपल इफेक्ट है जो अंदर से बाहर की ओर फैलता है।
यानी राजनीतिक व्यवस्था कोई अलग चीज नहीं, वो लोगों की सामूहिक नैतिकता का ही आईना है।
बिल्कुल सही। अगर हमें बाहरी दुनिया में सुधार चाहिए तो शुरुआत अपने अंदर के सुधार से करनी होगी। एनालेक्स 20 हिस्सों या किताबों में बटी हुई है, पर जैसा हमने कहा, इसमें विषय अक्सर दोहराए जाते हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हम एक एक अध्याय देखने के बजाय उन मुख्य धागों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो पूरी किताब में बार बार नजर आते हैं।
ठीक है, तो सबसे अहम धागा कौन सा है?
शायद सबसे मोटा और सबसे अहम धागा है रिन का।
रिन?
हाँ, रिन। इसे कन्फ्यूशियस का सर्वोच्च सद्गुण माना जाता है। इसका सीधा अनुवाद तो मुश्किल है, पर इसे हम मानवता, परोपकार, भलाई या सच्ची आंतरिक अच्छाई कह सकते हैं। ये दरअसल इंसानों के बीच जो आदर्श रिश्ता होना चाहिए उसका सार है, और इसकी जड़ में है सहानुभूति। ये महसूस करना कि दूसरा इंसान भी मेरे जैसा ही है, उसकी भी वही भावनाएं और जरूरतें हैं।
ये तो बहुत मौलिक बात है।
हाँ, और रेन कोई हवा हवाई चीज नहीं है। ये दो चीजों से जाहिर होती है। एक है जोंग यानी निष्ठा, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी।
ओके।
और दूसरा है शु यानी पारस्परिकता, और यहीं से वो मशहूर सुनहरा नियम या गोल्डन रूल निकलता है, जिसे कन्फ्यूशियस ने शायद सबसे पहले इतने साफ शब्दों में कहा था।
कौन सा?
दूसरों पर वो मत थोपो जो तुम खुद पर नहीं चाहते।
अरे वाह, ये तो हर दौर के लिए सच है।
बिल्कुल, कितना सीधा और शक्तिशाली सिद्धांत है। रेन सिर्फ महसूस करने की नहीं बल्कि करने की चीज है, रोजमर्रा के व्यवहार में उतारने की चीज।
ठीक है, तो अगर रेन अंदर की आवाज है तो फिर ली क्या है?
ली को हम उसकी बाहरी अभिव्यक्ति कह सकते हैं।
बाहरी मतलब?
मतलब नियम, रीति रिवाज, शिष्टाचार, सामाजिक परंपराएं, वो सब कुछ जो हमारे सामाजिक व्यवहार को एक ढांचा, एक सलीका देता है।
जैसे?
जैसे बड़े राजकीय समारोहों के नियम से लेकर खाने पीने के तौर तरीके या बड़ों से बात करने का लहजा, ये सब ली में आ जाता है।
लेकिन क्या ये ली सिर्फ बाहरी दिखावा या कर्मकांड नहीं है? कई बार ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ नियम निभा रहे हैं, दिल से नहीं।
हाँ, ये सवाल उठता है, पर कन्फ्यूशियस के लिए ये बहुत गहरा था। वो इसे सामाजिक व्याकरण की तरह देखते थे।
सामाजिक व्याकरण?
हाँ, जैसे भाषा के लिए व्याकरण जरूरी है ताकि हम सही ढंग से बात कर सकें, वैसे ही समाज के लिए ली जरूरी है ताकि लोग सामंजस्य से रह सकें और एक दूसरे का सम्मान कर सकें।
अच्छा, उनके लिए ली का पालन करना असल में रेन को विकसित करने और दिखाने का तरीका था।
किताब के 10वें हिस्से में तो कन्फ्यूशियस के अपने रोजमर्रा के व्यवहार का बड़ा डिटेल वर्णन है।
सच में? क्या क्या लिखा है?
वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे खाते थे, कैसे चलते फिरते थे, लोगों से कैसे मिलते थे। ये दिखाता है कि उनके लिए ली जीवन के हर पहलू में कितना अहम था।
ये दिलचस्प है कि कैसे अंदरूनी भावना रेन और बाहरी आचरण ली को जोड़ा गया है। अच्छा, आपने कहा था कन्फ्यूशियस दो तरह के लोगों की तुलना करते हैं, जुन्जी और शाओरेन।
हाँ, जुन्जी यानी श्रेष्ठ व्यक्ति और शाओरेन यानी क्षुद्र या छोटा व्यक्ति।
इनमें मुख्य अंतर क्या है?
कई अंतर बताते हैं वो। जैसे जुन्जी हमेशा सही और न्यायपूर्ण ही काम करने की सोचता है, जबकि शाओरेन सिर्फ अपने फायदे, ली यहाँ मतलब प्रॉफिट, की परवाह करता है।
ठीक है।
जुन्जी शांत और स्थिर रहता है, मुश्किलों में भी अपना संतुलन नहीं खोता, जबकि शाओरेन हमेशा चिंतित और परेशान रहता है। और शायद सबसे बड़ी बात, जब कुछ गलत होता है या कोई कमी होती है तो जुन्जी अपने अंदर झांकता है, अपनी गलती या कमी ढूंढता है।
और शाओरेन?
वो दूसरों पर उंगली उठाता है।
बिल्कुल।
वो फौरन दूसरों को दोष देने लगता है, ब्लेम गेम।
समझ गया।
ये फर्क हमें दिखाता है कि कन्फ्यूशियस व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्म सुधार पर कितना जोर देते थे। और सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाली बात जो पहले भी कही, ये कोई पक्की कैटेगरी नहीं है। कोई भी इंसान कोशिश करके, लगातार खुद पर काम करके शाओरेन से जुन्जी बन सकता है, दरवाजा सबके लिए खुला है।
ये वाकई प्रेरणादायक है। अच्छा, अब परिवार की बात करते हैं। कन्फ्यूशियस के विचारों में परिवार का क्या स्थान था? बहुत अहम लगता है।
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कन्फ्यूशियस मानते थे कि परिवार ही वो पहली नर्सरी है जहाँ नैतिकता के बीज बोए और सींचे जाते हैं।
पहली पाठशाला,
हाँ कह सकते हैं। और इसका आधार है शाओ, यानी संतान का माता पिता के प्रति कर्तव्य और सम्मान। इसमें सिर्फ उनकी देखभाल करना या आदर करना ही नहीं, बल्कि अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे आचरण से परिवार का नाम रोशन करना भी शामिल है।
अच्छा।
और ये जो सम्मान और निष्ठा हम परिवार में सीखते हैं, वही फिर समाज और राज्य के प्रति हमारे व्यवहार का आधार बनती है। इसीलिए शाओ को रेन की जड़ भी कहा गया है।
यानी अच्छी नागरिकता की शुरुआत अच्छे पारिवारिक रिश्तों से होती है। समझ गया। अच्छा, सीखने के बारे में उनके क्या विचार थे? क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफी है?
बिल्कुल नहीं। कन्फ्यूशियस जीवन भर सीखते रहने पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उनके लिए सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना या कोई स्किल हासिल करना नहीं था।
तो फिर क्या था?
सच्चा सीखना एक नैतिक प्रक्रिया थी। इसमें तीन चीजें जरूरी हैं। पहला, पढ़ना या सुनना। दूसरा, उस पर गहराई से सोचना, चिंतन करना। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, जो सीखा और समझा है उसे अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारना, उसका अभ्यास करना।
मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों।
हाँ, उनका वो मशहूर कथन है ना, बिना सोचे सीखना व्यर्थ है, बिना सीखे सोचना खतरनाक है। ज्ञान और विवेक का संतुलन बहुत जरूरी है।
ये तो बहुत गहरी बात है। और ये सीखना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी है, खासकर अगर कोई नेतृत्व की भूमिका में है। शासन के बारे में उनके क्या विचार थे? क्या सजा और कानून का डर ही सबसे जरूरी है?
कन्फ्यूशियस इससे सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि सिर्फ कानून और सजा से आप लोगों के बाहरी व्यवहार को तो शायद कंट्रोल कर लें,
हाँ,
पर उनके दिल को नहीं जीत सकते। उनमें शर्म की भावना या सही गलत का एहसास पैदा नहीं कर सकते।
तो फिर कैसे शासन हुआ?
सबसे असरदार शासन होता है शासक के अपने नैतिक चरित्र देश से। एक गुणी सदाचारी शासक एक चुंबक की तरह होता है।
अच्छा।
हाँ, उसका अच्छा आचरण ही लोगों को अच्छा बनने और नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। लोग डर से नहीं बल्कि सम्मान और प्रेरणा से उसका अनुसरण करते हैं।
इसी से जुड़ा हुआ उनका वो नामों का सुधार, ज़ेंगमिंग का सिद्धांत भी है ना?
हाँ, बिल्कुल।
जिसका मतलब है कि जैसा पद या नाम हो वैसा ही काम और आचरण भी होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, वही उनका कहना था। शासक को शासक की तरह व्यवहार करना चाहिए, मंत्री को मंत्री की तरह, पिता को पिता की तरह और पुत्र को पुत्र की तरह। हाँ। जब लोग अपनी भूमिकाओं और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों के अनुसार नहीं जीते, तभी समाज में गड़बड़ी और अव्यवस्था फैलती है। ये एक तरह से सामाजिक भूमिकाओं में स्पष्टता और उसके अनुरूप आचरण पर जोर है।
ये बात भी बहुत मायने रखती है। तो हमने कई अहम विचारों पर बात की, रेन, ली, जुनजी, शाओ, सीखना, नैपिक नेतृत्व। अगर हमें इन सब बातों का सार निकालना हो, कुछ मुख्य संदेश जो एनएलएक्स हमें देता है, तो वो क्या होंगे? मेरे लिए पहला शायद यही है कि व्यक्तिगत नैतिकता ही सामाजिक व्यवस्था की नींव है। सब कुछ व्यक्ति से शुरू होता है ना?
मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और दूसरा ये कि सद्गुण कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बैठे बिठाए मिल जाए, इसे लगातार साधना पड़ता है। जीवन भर सीखने और अभ्यास करने से ही ये विकसित होते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये जिम जाने जैसा है, एक दिन में बॉडी नहीं बनती।
हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण दिया। तीसरा संदेश जो मुझे लगता है आज के नेताओं के लिए या किसी भी लीडर के लिए बहुत जरूरी है, सच्चा नेतृत्व डंडे के जोर से नहीं बल्कि नैतिक उदाहरण पेश करने से आता है।
हाँ,
आपका चरित्र ही आपकी असली ताकत है।
बिल्कुल। और चौथा, समाज में सामंजस्य तभी आता है जब हर कोई अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, कर्मचारी हो, नागरिक हो या शासक। ये आपसी तालमेल का मामला है।
ये सारी बातें आज भारत के इस संदर्भ में भी सोचें तो कितनी कितनी प्रासंगिक लगती हैं।
हाँ, बिल्कुल।
परिवार में बड़ों का सम्मान शाओ, काम की जगह पर ईमानदारी झोंग, सार्वजनिक जीवन में नेताओं से नैतिक आचरण देव की उम्मीद, ये सब कन्फ्यूशियस के विचारों से कहीं ना कहीं जुड़ते ही हैं।
और एनएलएक्स में यादगार कथनों का तो जैसे खजाना है। कुछ ऐसे वाक्य हैं जो सीधे दिल पर असर करते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ पर दोबारा नजर डालें?
हाँ जरूर। पहला तो वही गोल्डन रूल जो आपने बताया था, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों पर मत थोपो। ये तो मतलब हर रिश्ते की बुनियाद होनी चाहिए।
बिल्कुल, किसी भी काम करने से पहले बस ये सोच लेना काफी है। दूसरा, सीखने और सोचने के संतुलन पर। बिना सोचे सीखना व्यर्थ है, बिना सीखे सोचना खतरनाक है।
हाँ, ये भी बहुत जरूरी है।
यह भी याद दिलाता है कि सिर्फ जानकारी रटना या सिर्फ अपनी ही धुन में रहना दोनों अधूरे हैं। ज्ञान और विवेक साथ साथ चलने चाहिए।
और तीसरा, वो जिम्मेदारी लेने वाला।
हाँ, उत्कृष्ट व्यक्ति जुन्जी कमी या गलती स्वयं में खोजता है, क्षुद्र व्यक्ति शाओरेन उसे दूसरों में खोजता है।
ये आत्मचिंतन और जवाबदेही की बात है। ब्लेम गेम खेलने के बजाय खुद को देखना बहुत शक्तिशाली।
और एक और जो रेन को समझने में मदद करता है, स्वयं पर विजय पाना और ली सामाजिक नियमों शिष्टाचार पर लौटना ही रेन है, मानवता है।
अच्छा,
यानी सच्ची मानवता सिर्फ अच्छी भावनाएं रखने से नहीं आती, बल्कि आत्म अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने से आती है, अंदर और बाहर का संतुलन।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, पर सवाल वही है कि हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में इन विचारों को उतारें कैसे? क्या ये संभव है?
मुझे लगता है बिल्कुल संभव है, अगर हम बड़े बदलावों के बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं।
जैसे?
जैसे व्यक्तिगत स्तर पर आत्मचिंतन को अपनी आदत बनाएं। रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार ही सही, बस 5 मिनट सोचें, आज या इस हफ्ते मैंने ऐसा क्या किया जो रेन के अनुरूप था, कहां मैं और बेहतर कर सकती थी। रिश्तों में उस गोल्डन रूल को याद रखें, किसी से कुछ कहने या करने से पहले एक पल रुक कर सोचें, क्या मुझे ये अपने लिए पसंद आता।
ठीक है, और काम की जगह पर
अगर कोई टीम लीडर है या मैनेजर की भूमिका में है,
वहां तो नैतिक उदाहरण बनना सबसे जरूरी है। अपनी टीम के साथ निष्पक्ष रहें, उनकी भलाई का ध्यान रखें। रेन सिर्फ नतीजों पर नहीं, प्रक्रिया और ईमानदारी पर भी जोर दें। अपनी भूमिका की जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं। जेंगमिंग, यकीन मानिए, डर से ज्यादा सम्मान और वफादारी मिलेगी।
परिवार में भी ये लागू होता है ना, सिर्फ बच्चों को उपदेश देने के बजाय खुद वैसा आचरण करें जैसा आप उनसे चाहते हैं। शाओ यानी सम्मान, वो दोनों तरफ से आता है। बिल्कुल। और सामाजिक स्तर पर हम अक्सर व्यवस्था को कोसते हैं। कन्फ्यूशंस शायद कहते कि पहले अपने आचरण को देखो।
ये मुश्किल है।
हाँ, पर जरूरी है। क्या हम अच्छे नागरिक हैं? क्या हम अपने आस पड़ोस में, अपने समुदाय में ली शिष्टाचार नियमों का पालन करते हैं? क्या हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं? ये छोटी चीजें ही मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं।
तो आज की इस चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आ रही है वो ये है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत खुद से होती है।
हाँ,
कन्फ्यूशियस हमें बाहर क्रांति करने के बजाय अपने अंदर एक नैतिक क्रांति लाने के लिए कहते हैं। ये शायद ज्यादा मुश्किल है, पर ज्यादा टिकाऊ भी लगता है।
और मेरे लिए सबसे प्रभावशाली बात है इसकी गहरी मानवीयता। ये किसी भगवान या परलोक पर केंद्रित नहीं है।
सही।
ये यहीं इसी बनिया में इंसानी रिश्तों को बेहतर बनाने, खुद को नैतिक रूप से विकसित करने और एक सार्थक जीवन जीने का एक व्यवहारिक नक्शा देता है। ये फिलॉसफी से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनने की यूजर मैनुअल जैसी लगती है।
हाँ, यूजर मैनुअल।
हाँ, कन्फ्यूशियस हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की असली कीमत उसके पद या पैसे में नहीं, उसके चरित्र में है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी पुरानी नहीं होती।
बिल्कुल सही कहा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।